गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में बताऊंगी। ये पाठ्यक्रम का जो संगठन किया गया है, इस संगठन के साथ जो विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, पाठ्यक्रम नियोजक हैं, सभी के अपने अलग अलग मत हैं। तो जो इन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रकारों को निर्धारित किया है, जो मुख्य प्रकार हैं पाठ्यक्रम के, जैसे सबसे पहले आपका आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात वह पाठ्यक्रम जिसमें बालकों की अपेक्षा हम विषयों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि विषयों को महत्व देना, पुस्तकों को महत्व दिया जाता है, पुस्तकों को महत्व देना, तो जो ये पाठ्यक्रम का प्रकार है इसको हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। हमारे देश में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जो पाठ्यक्रम प्रचलित है, वह इसी प्रकार का पाठ्यक्रम है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं भी हैं, अर्थात इसमें कुछ दोष भी हैं। यह विषय केंद्रित होने के कारण केवल विषय पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बालक की विशेषताओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात यह अमनोवैज्ञानिक है। अर्थात इसमें हम बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं इत्यादि पर कोई भी ध्यान नहीं देते। दूसरी बात आती है, जब जरूरतों का ध्यान नहीं देंगे तो इसका जो सॉफ्टनेस है वह समाप्त हो जाता है, अर्थात यह पाठ्यक्रम कठोर होता है। तीसरी बात आती है कि इसके द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। चौथी बात आती है आपकी कि बालकों में इसके द्वारा जनतंत्रात्मक भावनाओं का विकास नहीं किया जा सकता, और यह पाठ्यक्रम केवल बालक के रटने की शक्ति पर बल देता है न, और परीक्षा पास करने की शक्ति पर बल देता है, ना कि उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको उभारने में। चलिए दूसरा नंबर आपका आता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें बालकों के विकास के विशेष अनुभवों को, बालक के विकास के जो अनुभव हैं उनको हम विशेष महत्व देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है यह विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अस्पष्ट सा होता है, क्योंकि जब हम फील करते हैं तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट ना हो पाने की वजह से कहीं कहीं प्रॉब्लम भी आ जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत हम शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर सकते, और इसके द्वारा जो हम बालकों की बातों को, बालकों को पाठ्यक्रम बताते हैं, वह पाठ्यक्रम बताने में अधिक समय लगता है। तीसरी चीज आती है आपकी कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में जो ज्ञान का क्रम होता है, इसका संगठन होता है, वह उचित नहीं होता, अर्थात अनुचित होता है, ठीक नहीं होता। अगली बात आपकी आती है कि जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत हम क्रियाओं और अनुभवों का क्रम निश्चित नहीं कर पाते, क्योंकि ये निश्चित होता ही नहीं है। अगली बात है आपकी कि इस पाठ्यक्रम को जब हम अप्लाई करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो यह अत्यंत खर्चीला है, अत्यंत धन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और इसके साथ साथ इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है इसके द्वारा बालकों की प्रगति का मूल्यांकन बहुत कठिन होता है, और इसके द्वारा विभिन्न जो अनुभव होते हैं उन सभी अनुभवों को एक दूसरे से कोरिलेट करना, सहसंबंधित करना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन अगर देखा जाए, माइनर वे में देखा जाए, तो ये जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है वह अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत कल्याणकारी है। तो इस लाभकारी वाले पाठ्यक्रम में तमाम दोषों के होने के कारण भी यह पाठ्यक्रम हमें लाभ देता है। अगला पाठ्यक्रम आपका आता है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम से मतलब है कि वह पाठ्यक्रम जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जैसा कि जॉन डीवी ने कहा है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज के कार्य करने में उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने लगेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला पाठ्यक्रम आपका आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से मतलब है कि वह पाठ्यक्रम जिसमें विषयों की अपेक्षा बालक को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न आवश्यकताओं, उसकी जरूरतों, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं, इन सबके निखार हेतु, इन सबके विकास हेतु किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता चलता है। जैसे आपने देखा मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे जो है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं, अर्थात बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कला शिल्प, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम को कहते हैं हम जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाओं जैसे कताई, बुनाई, चमड़े का कार्य, लकड़ी का कार्य, किसी भी प्रकार की कला, जो कि कला आपको के अंदर सृजनशीलता का विकास करती है, उस पे आधारित यह पाठ्यक्रम है। और इन्हीं को केंद्र मान करके हम दूसरे विषयों की शिक्षा देते हैं। आप देखते हैं तमाम तरह की पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है ना, तो ये जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, इस पेंटिंग में के माध्यम से भी कुछ बातों को कहने का रहता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग कभी दूरदर्शन पे, कभी आपके न्यूज पेपर में भी दिखाई जाती है कि जो कि उसके कारण निवारण और उसके जो रोकने के लिए बिंदु है उनको पेंटिंग इत्यादि के माध्यम से बताई जाती है। तो यह एक कला है, अर्थात शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये चीज आती है। तो इसमें हम शिल्प को केंद्र मान करके दूसरे विषयों की शिक्षा देते हैं। हमारे देश की जो वर्तमान बेसिक शिक्षा प्रणाली है, उस प्रणाली में आप देखे हैं कि तमाम प्रकार की कलाओं की बात कही है गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में, तो वह यही कला है, वह इसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। सुसंबद्ध अर्थात एक दूसरे को, एक दूसरे से कोरिलेट कर देना, संबंधित करके। तो जब हम अलग अलग विषयों को विद्यालय में या कहीं भी विभिन्न विषयों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग करके नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाते चलते हैं, तो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम में हम इस बात को देखते हैं कि बालक के सामने ज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं वो अलग अलग ना बट करके संबंधित रूप में प्रस्तुत हुए, सुसंबंधित होकर के प्रस्तुत हुए, तो अनेकता में एकता, इस तरह से यह सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कार्य करता है। और आपका लास्ट आता है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम मैं आपको पूर्व में बता भी चुकी हूँ अलग से कि कोर पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम या समन्वित पाठ्यक्रम, यह अमेरिका की ही देन है, आपको बताया मैंने। तो ये जो कोर पाठ्यक्रम है, इसे हम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। जो अनिवार्य विषय होते हैं उनका अध्ययन करना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होता है, और ऐच्छिक विषयों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं इत्यादि के माध्यम से उन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। इसमें जो है बच्चे का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में बच्चे को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को आसानी से सुलझाते हुए आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। अर्थात आप देखते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है या आपको भी जो इंटरेस्ट होता है, तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनते हैं। तो जब इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुना गया, तो वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में आगे भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपको योग्य नागरिक बनाने के लिए सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से हो गया आपका पाठ्यक्रम की विशेषताएं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पाठ्यक्रम है यह शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या निर्माण में आप शिक्षकों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसमें ज़रूरत क्या है। जैसे आप शिक्षक अपनी भूमिका समझें कि शिक्षक को पाठ्यचर्या निर्माण अगर करना है तो वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। शायद इसी कारण देश काल और परिस्थिति की जो जरूरतें होती हैं उनके हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता चलता है। शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है वह सहभागिता केंद्रित हो। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब पाठ्यक्रम निर्माण हो तो वो समसामयिक बदलाव है, उन समसामयिक बदलावों को ध्यान में रखें। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं आप लोग कि लॉकडाउन की प्रक्रिया के कारण हम लोग जो कि कभी भी घर बैठे आपको नहीं पढ़ाए, इस समय वो भी कार्य हो रहा है। और बालकों में शिक्षक को चाहिए कि रचनात्मक शक्ति का विकास अवश्य करे। रचनात्मक शक्ति के साथ साथ पाठ्यचर्या जब बनाई जाए तो वो स्थानीय ज्ञान, पर्यावरण, कार्य अनुभव, समावेशी शिक्षा आदि से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि जो पाठ्यचर्या निर्माण किया जाए उसमें बच्चों की रुचि, शारीरिक क्षमता, सामान्यीकरण की क्षमता बढ़ाने वाले तथ्यों को निश्चित रूप से समाहित करना चाहिए। इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा आयु के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। साथ में जो मान्यताएं हैं मान्यताओं से युक्त होनी चाहिए पाठ्यचर्या। मूल्यवादी मान्यताएं, ये मूल्यवादी मान्यताएं समाज को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग करती हैं। ये दूध में चीनी की तरह बच्चे के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उनको समावेशित करके बालक को आगे समाज में बढ़ाने योग्य अच्छा नागरिक बनाने में सपोर्ट करती हैं। जैसे ईमानदारी है, सहयोग है, सहिष्णुता है, सहानुभूति है, ये सारी चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो पाठ्यचर्या में शिक्षक को चाहिए कि इन मूल्यवादी मान्यताओं को अवश्य में रखे। नेक्स्ट आपका आता है पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो कि समसामयिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षमता का विकास करे। तो ये आपकी हो गई पाठ्यचर्या। मैं आपको डायग्राम भी भेज रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्टिविटी पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।